महाप्रभु के धर्म की, हित धर्म की, प्रेम धर्म की जो सबसे बड़ी चाबी, सबसे बड़ी कुंजी, जो हितरिवंश महाप्रभु हम सबके कल्याणार्थ दे कर गए, सेवा और श्री जी के चरणों में अनन्यता, जो प्रेम का पहला और अंतिम लक्षण है। महाराज ने सिद्धांत की बहुत थोड़ी सी बात, लेकिन अर्थ अमित पर अक्षर थोड़े, सारी बात बहुत थोड़े से अक्षरों में समझाई। आरंभ किया सबसों हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तन ही राख सतसंग में मन ही प्रेम रस भेव। और बहुत सीधी सी बात, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव, निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। और प्रेम की परिणति अंतिम कक्षा, रसना कटौं जो अनरटौं निरख अनफुटौं नयन, श्रवण फुटौं जो अनसुनो बिन राधा यशवैन। श्री किशोरी जी के श्री चरणों की अनन्यता, एक छोटे से महाप्रभु के लीला काल में हुई एक लीला का वर्णन करने के बाद विराम लेना चाहूंगा। वैसे मुझसे आज कहा गया था कि आधा आधा घंटा आपको ज्यादा बोलना है, मैंने कहा किस खुशी में, मतलब वृंदावन से महाराज लोग आ रहे हैं इस खुशी में। महाप्रभु जी के परम कृपा पात्र शिष्य थे श्री नाहरमल जी, और जब वो श्रीधाम वृंदावन आते थे तो उनसे एक पल को भी महाप्रभु जी के दर्शनों के बगैर नहीं रह जाता था। तो श्रीमन महाप्रभु श्री मदन टेर पे विराजते थे, जरूर दर्शन करना आपके जब जाओ तो स्थान का। और कभी जीवन में दोबारा संयोग श्री जी बनाए और मुझे आपसे मिलने का सुअवसर मिले तो वहां जाके मुझे बताना, अपना अनुभव कहना। महाप्रभु विराजते थे, नाहरमल जी पहुंचे तो महाप्रभु जंगल गए थे। सेवक ने कहा कि वो तो जंगल में गए हैं, तो नाहरमल जी से रहा नहीं गया, वो उनके पीछे पीछे जंगल में पहुंच गए। तो देखा कि माखन सा कोमल श्रीअंग, सेवक जी ने लिखा है मार विमोहन तन धरेओ, कामदेव को भी मोहित कर दे ऐसा अनुपम रूप, अनुपम सुंदर त्रिभुवन मोहन सा रूप श्रीमन महाप्रभु का, परम सुकोमल वपु। और महाप्रभु नंगे पाँव जंगल में श्रीजी का अमनिया प्रसाद बनाने के लिए जो चूल्हा जलता था उसमें जो लकड़ी जलती थी वो लकड़ियां जंगल से बीन रहे थे, और लकड़ियां चुन चुन कर अपने दुपट्टे में रखते जा रहे थे, इनसे कुछ कांटों के कारण दुपट्टा भी कुछ फट सा रहा था। नाहरमल जी से अपने सद्गुरुदेव को ऐसे देखा नहीं गया, और उन्होंने उनके प्रेमवश कह दिया, बोले महाराज और सब सेवा के कार्य तो आप करते हैं समझ में आता है, लेकिन ये लकड़ी चुनने के लिए भी आप स्वयं आ रहे हैं, यदि आप आज्ञा करें तो कोई भी धीमर ये कार्य थोड़ा सा धन लेकर कर दिया करेगा, और श्री जी के भोग बनाने के लिए जो लकड़ी चाहिए ईंधन के लिए वो आपकी सेवा में पहुंचा दिया करेगा। पहले तो महाप्रभु जी को थोड़ा सा बुरा सा लगा, अटपटा सा लगा, और उन्होंने कहा कि नाहरमल सेवा का कार्य भी कोई छोटा बड़ा होता है क्या, और सेवक को तो सेवा में ही सुख है, और सेवा में कहां छोटो और कहां बड़ो, सेवा तो सेवा है। पर नाहरमल जी के चित्त का संशय गया नहीं, उन्होंने कहा सेवा तो ठीक है महाराज, लेकिन आप लकड़ी लेने के लिए भी स्वयं आ रहे हैं जंगल में, तो ये कार्य तो कोई नौकर भी कर देगा। कहते हैं शायद बहुत थोड़े से ऐसे हुए होंगे कुछ घटनाक्रम इसमें महाप्रभु जी का सदा मुस्कुराते रहने वाला मुख कमल थोड़ा सा म्लान हो गया, महाप्रभु थोड़े से उदास हो गए, थोड़े से क्रोधित हुए, और कहा नाहरमल राजकीय अन्न खा खा के तेरी बुद्धि बौरा गई है, तो सेवा के कार्य को नौकर का कार्य बताता है। और परम रहस्य की बात, परम सुंदर बात, जो बात कहने के लिए मैंने ये लीला कही है, श्रीमन महाप्रभु ने जगत को सिखाने के लिए, हमको दिखाने के लिए कहा कि नाहरमल जो भक्ति मैंने करोड़ों करोड़ों यत्न करके संतों की कृपा से पाई है, तू उसको छुड़ाने आया है? तू मेरी सेवा के कार्य को नौकर का कार्य बताता है? आज से मैं तेरा त्याग करता हूं। तुम अपने हो इसलिए इससे अधिक कुछ दंड नहीं दे रहा तुमको, लेकिन इसी क्षण तुम्हारा त्याग करता हूं। तुम्हारा मुख देखने से तो किसी और की भजन भावना भी क्षीण हो जाएगी। नारमल जी को तब लगा कि मुझसे अपराध हुआ है, गुरु चरणों का अपराध हो गया है, सेवा का अपराध हो गया है। तो नारमल जी ने क्षमा याचना की, लेकिन महाप्रभु सब कुछ तो सहन कर सकते थे, सेवा का अपराध उनसे सहन नहीं हुआ। और जिस तरह माँ की डांट में, माँ की मार में भी प्रेम छिपा होता है, नाहरमल जी को दंडित करने में भी महाप्रभु का प्रेम था। किसके लिए? नाहरमल जी के बहाने हम सबके लिए, कि हम सेवा का महत्व जाने। आपने बहुत सुंदर मंदिर बनवा दिया, बहुत सुंदर ठाकुर जी विराजमान कर दिए, लेकिन आपने पुजारी रख दिया, पुजारी पूजा कर सकता है, सेवा तो आप ही करेंगे। सेवा तो वो करता है जिसका अपनापन होता है, जो ये समझे ना कि ये मेरे हैं, वो सेवा कर सकता है। और जिसका चित्त इतना सरस होने के लिए तैयार हो, जिसका चित्त इतना मधुर होने के लिए तैयार हो, वो सेवा कर सकता है। सेवक की बात याद आती है, श्री श्रीनाथ जी महाराज के एक सेवक थे, एक वैष्णव ब्राह्मण, गृहस्थी थे, थोड़ी बहुत जमीन थी, उसी से अपना गुजारा चलाते थे। एक बार बाजार में गए तो बहुत सुंदर फूल रखा था, तो तुरंत ब्राह्मण देवता के मन में आया कि ये फूल तो श्री श्रीनाथ जी के चरणों में चढ़ना चाहिए, कितना सुंदर फूल है। भक्त का लक्षण है, सेवक का लक्षण है, कि कोई भी सुंदर वस्तु देख के आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? मान लो आपने कोई सुंदर हार देखा तो आपके मन में सबसे पहले क्या आया? कि मैं पहन लूं, मेरे पास हो तो कितना अच्छा लगेगा, या ये आता है कि अगर मेरे प्रभु पहने तो कितना सुंदर लगेगा। चढ़ाऊं श्रीनाथ जी को ले जाकर, इतने में एक सेठ आ गया। अब सेठ की अपनी बुद्धि थी, उसने सोचा मैं सेठानी जी को दूंगा तो कितनी खुश हो जाएंगी, तो फूल तो मैं लूंगा। दुकानदार से पूछा फूल कितना है, ब्राह्मण देवता ने पूछा, उसने कहा दो आने का, सेठ जी ने कहा मैं चार आने दूंगा, फूल तो मैं लेके जाऊंगा। उसने कहा मैं आठ आने दूंगा, 16 आने। बात चलते चलते 1,00,000 रुपए तक पहुंच गए। ब्राह्मण देवता ने जो जमीन थी, घर में जो कुछ था, सब बेच दिया। बात एक फूल की नहीं है, चिंतन करिए ब्राह्मण देवता का कैसा भाव रहा होगा। हम तो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, करते नहीं है, सिर्फ कहते हैं। उसने करके बताया, सर्वस्व समर्पण करके बताया, एक फूल के लिए। किसी के लिए ये मूर्खता हो सकती है, एक सांसारिक बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए ये निरभाव हो सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि में अगर कहीं भगवान है, अगर कहीं प्रेम है, तो इसी भाव में है। 1,00,000 रुपए तक बात पहुंची, ठाकुर जी की लीला थी, सेठ की बुद्धि फिरी, उसने कहा अच्छा बाबा तुम ही ले जाओ। सर्वस्व देकर ब्राह्मण पुष्प लेकर मंदिर में पहुंचा। गोसाई जी ने राजभोग आरती कर चुके थे, सेठ ने पुष्प दिया तो गोसाई जी ने निज मंदिर में तो पधरा दिया। और शाम को जब पट खोले गए तो कथा कहती है श्री श्रीनाथ जी ने अपने मस्तक पर वो पुष्प धारण कर रखा था, और श्री गोसाई जी से कहा कि उस ब्राह्मण ने जैसे अपना सब कुछ मुझे दिया है, आज से मेरा सब कुछ भी उसका है, क्योंकि आप एक कदम चलिए वो 20 कदम चल के आने को तैयार है, आज से मेरा सब कुछ भी इसका है। इसके पीछे चिंतन की कितनी भावना होगी। हम लोग तो अनंत जन्म में उनकी सीमा का भी स्पर्श नहीं कर सकते, उनकी महिमा सीमा भी नहीं छू सकते, एक पुष्प मात्र चढ़ाने के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया। अरे जगत मजूरी देते हैं क्यों राखे भगवान, प्रभु रख लेंगे क्या? ठाकुर जी रबड़ी खिलाने वाले, खाने वाले नहीं है, वो तो चना कोई खिलाए तो रबड़ी दें बदले में, ऐसा स्वभाव है उनका। एक बार एक व्यक्ति ने श्री ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर हार बनाया, उसके मन में लोग चढ़ाते थे ठाकुर जी को सुंदर सुंदर श्रृंगार, उसके मन में आया मैं भी चढ़ाऊं, तो बहुत सुंदर हार उसने बनवाया, ठाकुर जी को जाके अर्पण किया। गोसाई जी ने ठाकुर जी को धारण कराया श्रृंगार में, ठाकुर जी प्रसन्न तो हुए, लेकिन उस ब्राह्मण से आके बोले कि अरे तुझे इतना श्रम तूने किया, जमीन बेची, घर का गहना बेच दिया, सब बेच के तू ये हार बनवा के लाया, मुझे कोई हार की कमी है क्या? ब्राह्मण ने दीन होकर, प्रणत होकर, कितनी सुंदर बात बोले, प्रभु आपको कमी पड़े और हम सेवा करें फिर तो सेवा करने का मौका ही कभी नहीं आएगा। आपको कमी क्यों पड़ने लगी? आपको कब कमी पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी? अगर हम यही सोचकर आपकी सेवा करें फिर तो हमारे को सेवा करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। लोग हमसे कहते हैं हम जा रहे थे वहां पर ठाकुर सेवा का कुछ ऐसा नहीं है, ये तो इनकी कृपा है कि उन्होंने वहां पर हमको रखा है और कृपा किया हुआ है, हम सेवा में हैं। लोग कहेंगे कि ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, भाव के। अरे वो तो भाव के भूखे हैं क्योंकि वो भगवान हैं। हम सेवक किस नाम के हैं? सेवक वो जो स्वामी की उत्तम से उत्तम सेवा करके बताए, सुंदर से सुंदर लाड़ लड़ा के बताए। और मैंने समझाया था, बताने का कोशिश किया था कि ये प्रकृति है, इसका सिद्धांत बीज और फल के बीच में है। एक बीज अनंत फल लेकर आता है और वो अनंत फल अनंत अनंत बीज लेकर वापस आते हैं। आपका किया गया एक ठाकुर जी के प्रति सेवा का कर्म प्रकृति में पड़ा हुआ वो बीज है जो अनंत अनंत सुख के, अनंत अनंत आनंद के फल लेकर आता है। ये सेवा का सार है, सेवा का रस है। तो महाप्रभु जी की बात को पुनः स्मरण करूंगा। महाप्रभु ने कहा जो भक्ति मैंने कोटि कोटि यत्न करके संतों की कृपा से पाई है। और मैं कभी वृंदावन जाता हूं तो महाराज लोग आए हैं, मुझे इस बात का असीम आनंद है। लेकिन हमारे परम पूज्य श्री अधिकारी श्री श्री राधेश लाल जी महाराज, उनसे उनसे मेरा बहुत स्नेह है और मेरी हृदय से इच्छा थी वो आए, किसी कारण से नहीं आ सके। कई बार उनके पास बैठता हूँ तो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोले इनकी सेवा में जो रहे ये दोनों काम कराते हैं, आपको सिंहासन पे बिठा देंगे, जगत से आपकी पूजा करा देंगे और एक मौका ऐसा आएगा कि आपको नाली साफ करनी पड़ जाएगी। और जो दोनों कार्य करते हुए इनका होके रहे वही सच्चा सेवक है। तो सब मौके आएंगे जीवन में, सब तरह की परिस्थितियां आएंगी, और जहां से मैंने आरंभ किया था उसी भाव के साथ कि हृदय में ये रहें, आप कहीं रहें कैसे भी रहें, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, बस राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। इसके बाद का कुछ कार्यक्रम है इसलिए आप लोग बैठे रहना, और मेरी विनती किसी को मुझे दक्षिणा देनी हो तो इतनी देना कि यहाँ से खाली मत जाना, पूर्ण आहुति का प्रसाद लेकर जाना और महाराज लोग को, ये आए इसी शर्त पे थे कि इनको वापस जल्दी पहुंचना है, आए इतनी हम सब पर बड़ी इनकी असीम कृपा रही। और जिस तरीके से आपने श्री चरणों का अभिवादन किया था उसी तरीके से विदा करना, सब लोग नाम लेते रहना, मैंने कहा था कोई उठेगा नहीं, अब भी जहां पे खड़े हो वहीं पे बैठ जाओ एक बार। मेरी प्रार्थना है 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, सब लोग सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठ जाइए।
जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन
सब कहिए
श्री राधा।